नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य वस्त्र उद्योग में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत। डीजीसीए ने इथियोपिया की ज्वालामुखी राख भारत पहुंचने के कारण विमानन कंपनियों से ज्वालामुखी की राख से प्रभावित इलाकों से बचने को कहा। यूरोपीय नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के शांति प्रस्तावों पर जेनेवा में बातचीत में हुई प्रगति का स्वागत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड के कुछ समूहों को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष तौर से वैश्विक आतंकी घोषित करने की प्रक्रिया की शुरू। और भारत ने ढाका में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीत लिया है। और अब समाचार विस्तार से। भारत और अफगानिस्तान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने वस्त्र क्षेत्र में प्रगाढ़ सहयोग के रास्ते तलाशने पर चर्चा की है। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में वस्त्र मंत्रालय के व्यापार सलाहकार ए बिपिन मेनन से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आर्थिक संबंध महानिदेशक शफीउल्लाह आजम कर रहे थे। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के रास्तों पर चर्चा की, जिसमें अफगान कपास किसानों के लिए तकनीकी समर्थन और प्रशिक्षण, शिपमेंट और वीजा की सुविधा और दोनों देशों के उद्योग निकायों के बीच निकट संपर्क शामिल हैं। दोनों देशों के बीच वस्त्र व्यापार संबंध का बहुत महत्व है। भारत का निर्यात पिछले वर्ष 6,87,00,000 डॉलर तक पहुंच गया। अफगानिस्तान ने 2024 में दुनिया से 74,28,00,000 डॉलर के वस्त्र और कपड़े आयात किए। विश्व दर्पण के लिए मृगनयनी पांडे।
अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के एक रिहायशी इलाके में पाकिस्तान के हमले में 9 बच्चों सहित 10 नागरिक मारे गए हैं। अफगान सरकार ने बताया कि इस हमले में एक स्थानीय निवासी के घर को निशाना बनाया गया। कार्यवाहक अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने बताया कि यह हमला मंगलवार रात लगभग 12 बजे खोस्त के गुरबुज जिले के मुगल कई इलाके में हुआ। नागरिक विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने मस्कट उड़ान सूचना क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली हालिया ज्वालामुखी राख गतिविधियों के बारे में सभी भारतीय विमानन कंपनियों को सुरक्षा परामर्श जारी किया है। डीजीसीए ने कहा है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और फ्रांस के टूलूज में स्थित ज्वालामुखीय परामर्श केंद्र ने ज्वालामुखीय परामर्श अष्टम जारी किया है। अष्टम विमानन कंपनियों को जारी किया जाने वाला एक विशेष संदेश है। इसमें विमानन कंपनियों को ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी से उठने वाले धुएं और राख के बारे में बताया जाता है। डीजीसीए ने सभी विमानन कंपनियों को संबंधित नियमों का पालन करने और सभी कर्मचारियों को इसके अनुसार जानकारी देने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से उठते धुएं और राख का गुबार कल रात भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के इलाकों और पंजाब को पार कर गया है। एक रिपोर्ट।
ज्वालामुखी के इस गुबार से दृश्यता में कमी आई है और इसके पूर्व की ओर बढ़ने से हवाई यातायात बाधित हुआ है। नागरिक विमानन महानिदेशालय ने कल विमान संचालन कंपनियों और हवाई अड्डों को इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। इस बीच अकासा एयर, इंडिगो और KLM विमानन कंपनियों ने कुछ उड़ानें रद्द कर दी हैं। इथियोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी रविवार को लगभग 10,000 वर्षों में पहली बार फटा। इससे लाल सागर के पार ओमान और यमन की ओर विशाल राख का बार उठा और पूर्व की ओर बढ़ गया। मौसम विभाग ने कहा है कि इससे दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर पर अधिक प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है, क्योंकि बादल की ऊंचाई 10 किलोमीटर से अधिक है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
यूरोप के नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए अमरीका के शांति प्रस्तावों पर जिनेवा वार्ता में प्रगति का स्वागत किया है। कल स्विट्जरलैंड में आयोजित बैठक में अमरीका के 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर चर्चा हुई। रूस की मांगों का भारी समर्थन करने के कारण इस प्रस्ताव ने यूक्रेन और यूरोप में राजधानियों में चिंता बढ़ा दी है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वार्ता से एक कदम आगे बढ़ा है, लेकिन अब भी कुछ बड़े मुद्दे हैं जिनका समाधान बाकी है। मीडिया से बातचीत में श्री वाडेफुल ने कहा कि यूरोप अथवा नाटो से संबंधित सभी मुद्दों को इस योजना से हटा दिया गया है, जो कल हासिल की गई एक निर्णायक सफलता है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वार्ता सार्थक रही और उन्होंने आशा व्यक्त की कि इसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड के कुछ समूहों को विदेशी आतंकी संगठन, विशेष तौर पर वैश्विक आतंकी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। व्हाइट हाउस की फैक्टशीट के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप मुस्लिम ब्रदरहुड के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का सामना कर रहे हैं, जो मध्य एशिया में अमरीका के हितों और सहयोगियों के विरुद्ध आतंक और अस्थिरता फैलाने के अभियानों को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल एक प्रशासनिक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को यह रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया कि क्या लेबनन, मिस्र और जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड की किसी शाखा को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। इसमें मंत्रियों को रिपोर्ट के 45 दिनों के भीतर किसी भी घोषणा पर आगे बढ़ने का आदेश दिया गया है। इस कदम से अरब जगत के सबसे पुराने और प्रभावशाली इस्लामिक आंदोलन में से एक पर प्रतिबंध लग जाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर अप्रैल में चीन जाएंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों के बीच फोन पर बातचीत के बाद ये घोषणा की। श्री ट्रंप ने कहा कि बातचीत में यूक्रेन और रूस के अलावा फेंटनिल तथा सोयाबीन जैसे कृषि उत्पादों पर भी चर्चा हुई। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव इफ्फी में फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं, प्रोड्यूसर्स और फेस्टिवल क्यूरेटर्स ने मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है, जिनका कल निधन हो गया था। इफ्फी की आयोजक एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा ने अभिनेता धर्मेंद्र के सम्मान में कल सभी ऑन स्टेज कार्यक्रम रद्द कर दिए, लेकिन फिल्मों का प्रदर्शन तय समय के अनुसार जारी रहा। एक रिपोर्ट।
इफ्फी में महिलाओं की आंतरिक संवेदनाओं और भावनाओं पर केंद्रित कई फिल्में दिखाई जा रही हैं, जिनमें द विजुअल फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो प्रमुख है और ध्यान आकर्षित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में स्लोवाक फिल्म फ्लड भी शामिल है। वहीं लाला एंड पॉपी और द परस्यूट ऑफ स्प्रिंग जैसी गैर मुख्य धारा की फिल्मों के निर्माताओं का कहना है कि कैसे उनका सिनेमा न केवल मनोरंजन करेगा बल्कि लोगों के मन पर गहरा प्रभाव भी छोड़ेगा। इसके अलावा कई क्षेत्रीय और छोटी समयावधि की अलग अलग मुद्दों को उजागर करती हुई फिल्में भी आकर्षण का केंद्र है। इस कार्यक्रम में महान अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि भी दी गई। उनके लिए कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित दर्शकों और कलाकारों ने 2 मिनट का मौन रखा। संगीतमय कार्यक्रम का शुभारंभ और समापन श्री धर्मेंद्र के फिल्म की गीत से हुआ। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा।
भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ढाका में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जीत युवाओं को प्रेरित करेगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच वस्त्र उद्योग में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत। डीजीसीए ने इथियोपिया की ज्वालामुखी राख भारत पहुंचने के कारण विमानन कंपनियों से इस राख से प्रभावित इलाकों से बचने को कहा है। यूरोपीय नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के शांति प्रस्तावों पर जेनेवा में बातचीत में हुई प्रगति का स्वागत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड के कुछ समूहों को विदेशी आतंकी संगठन और विशेष तौर से वैश्विक आतंकी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और भारत ने ढाका में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीत लिया है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।